আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যান ওয়া আদাম বাইনাল মা'ই ওয়াত-তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন, আম্মা বা'দ, ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم مبدا فياض عالم رحمائے خاص و عام یعنی ایک درویش کامل ایک مرد نیک نام ان کی صورت نور معنی کی علم بردار تھی ان کی سیرت تھی کمالات حقیقت القیام صوفی و صافی رحل جادہ عرفان حق صاحب سجادہ آل سید خیر الانام ایک ضرب حق لگا کر واصل حق ہو گئے نعرہ اللہ سے حاصل کیا ہو کا مقام سال رحلت یوں لکھو مائل کے مرد جنتی حاجی سید محمد طاہر اشرف نیک نام جلیل قدر علماء کرام اور برادران طریقت وقت کافی ہو چکا ہے مجھ سے قبل ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی جمال الدین قادری بغدادی دامت برکاتہم العالیہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرما رہے تھے اور آپ نے اپنا خطاب اسی جملے سے شروع کیا کہ آپ حضرات کا سلیکشن ہو چکا, اور یہ بڑی سچی بات ہے. ہم اہل طریقت اہل محبت اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ ہم سب کا سلیکشن ہو چکا, اسی لیے ہم الیکشن پہ یقین نہیں رکھتے, کیونکہ الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے, سلیکشن میں نہیں. اور سلیکشن بھی بزرگان دین کی طرف سے ہو تو سبحان اللہ, اور سلیکشن بھی وہ کر رہے ہیں جن کا سلیکشن ان کے اوپر والوں نے کیا, اور ان کا سلیکشن پھر ان کے اوپر والوں نے کیا, اور یہ سلسلہ چلتے چلتے پہنچے گا ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ لا ایسا نہیں, ہم سلیکشن والے لوگ ہیں, اسی لیے اس پر یقین رکھتے ہیں. بارگاہ رب العزت سے ان بزرگان دین کا سلیکشن کر دیا گیا, اسی لیے بچپن میں, ابھی حضرت کی عمر بہت کم ہے, حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف شفیع الجیلانی نبر اللہ مرکز کم سن ہے, والد گرامی کے پاس بیٹھے ہیں. والد محترم کا نام سید حسین اشرف اشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالی, ایک مجذوب بزرگ حاضر ہوئے, تشریف لائے, کہا میں اس صاحبزادے سے کچھ سننا چاہتا ہوں. والد گرامی نے کہا سناؤ, قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی سورت کوئی آیت. حضرت قطب ربانی نے سورہ یوسف کی تلاوت فرمائی اور بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت کی. دوران تلاوت وہ بزرگ کبھی مسکراتے اور کبھی روتے. والد گرامی دیکھتے رہے, حیران ہوئے. جب تلاوت مکمل ہوئی تو ان مجذوب بزرگ نے آگے بڑھ کے حضرت قطب ربانی کی پیشانی کو بوسا دیا. والد گرامی نے پوچھا کہ یہ دوران تلاوت مسکرانے اور رونے کی وجہ؟ کہا مسکراتا تو اس لیے تھا کہ اس بچے کی پیشانی پر نور ولایت چمکتا ہوا دیکھ رہا. یہ ایک وقت آئے گا کہ کسی مقام پر پہنچے گا, اور روتا اس لیے ہوں کہ جب یہ اپنے مقام پر پہنچے گا آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے, اس کی بہار نہیں دیکھ سکیں گے. حضرت قطب ربانی کے والد گرامی کو ان مجذوب بزرگ نے یہ فرمایا, اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. اس کے بعد سے حضرت حافظ سید حسین اشرف اشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے فرزند قطب ربانی سید طاہر اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ پر خصوصی توجہ کرنا شروع کر, اور تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی تعلیم, مجاہدہ, چلہ کشی بھی شروع کرا دی. چنانچہ 9 سال کی عمر میں آپ نے ناف تک دریائے جمنا میں کھڑے ہو کر سورہ مزمل شریف کا چلہ کیا. 9 سال کی عمر میں, آج بڑے بڑے نہیں کر سکتے. پھر وہی بات ہے کہ سلیکشن پہلے سے ہو چکا تھا, منتخب پہلے سے کر لیا تھا, اسی لیے خالق کائنات نے صلاحیتیں پہلے سے عطا فرمائی. وقت مختصر ہے اس لیے میں صرف اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں. حضرت نے 40 دن نہایت محنت کے ساتھ, مجاہدے کے ساتھ اس چلے کو مکمل کیا. والد گرامی کا وصال ہو گیا, اس کے بعد علوم دین کی طرف متوجہ ہوئے اور وقت کے جید علماء کے سامنے علوم دین کی تحصیل فرمائی, اور پھر اپنے استاد محترم کے حکم پر 2 سال مدرسہ حسین بخش دہلی میں تدریس کے فرائض انجام دی. لیکن ایک عشق کی آگ, ایک چنگاری جو قلب میں لگی ہوئی تھی, جو والد گرامی قلب میں لگا گئے تھے, بے چینی تھی, بے قراری تھی کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو اس کشتی روحانیت کو پار لگا دے. اسی دوران ایک بزرگ حضرت امیر علی شاہ کمبل پوش رحمت اللہ تعالی سلسلہ اویسیہ کے بزرگ, وہ تشریف لائے اور ایک نگاہ ڈالی حضرت قطب ربانی پر, اور سمجھ لیا کہ یہ نوجوان جو یہاں مسند تدریس پر بیٹھ کر لوگوں کی علمی پیاس کو بجھا رہا ہے, اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے بے چین, بے قرار ہے. ایک نگاہ ڈالی, آپ سب کچھ چھوڑ کر ان کے پیچھے روانہ ہو. بالکل اسی طرح جس طرح مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کتابیں لے کر بیٹھے ہیں, حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں, مولانا حوض کے کنارے بیٹھے ہیں, شمس تبریز رحمت اللہ علیہ تشریف لائے, پوچھا مولانا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ چیز ہے جو تم نہیں جانتے, یہ قال ہے, تم نہیں جانتے, تو نمی دانی. شمس تبریز نے کتابیں اٹھا کر حوض میں ڈالنا شروع کر دی. اب کتاب اگر حوض میں چلی جائے پانی میں تو کیا بچے گا, اور وہ بھی پرنٹڈ نہیں, ہاتھ سے لکھی ہوئی. مولانا بے چین ہو گئے. مولانا روم نے کہا یہ کیا کیا, یہ سارا علمی سرمایہ یہ اب میسر نہیں, یہ سارا پانی میں ڈال دیا. شمس تبریز نے مسکرا کر دیکھا, پانی میں ہاتھ ڈالا, کتابیں نکال کر مولانا کے حوالے کی اور کتابوں میں سے خاک جھاڑ دی. پانی میں سے کتاب نکل رہی ہے بجائے پانی کے خاک نکل رہی, بالکل سوکھی کتابیں مولانا کے حوالے کر دی. مولانا کہتے ہیں یہ چیز یہ کیا ہے؟ شمس تبریز نے کہا یو نمی دانی, یہ تم نہیں جانتے, یہ حال ہے, تو نہیں جانتا. انہوں نے کہا تھا نا یہ قال ہے, تم نہیں جانتے, انہوں نے کہا یہ حال ہے, تم نہیں جانتے. اور اس کے بعد روانہ ہو گئے. مولانا نے اپنی دستار اتار دی, ننگے سر ننگے پیر ایک مرد قلندر کے پیچھے چلے جا رہے. ایک جھلک دکھائی, سب کچھ چھوڑ کر تیار. اسی طرح حضرت امیر علی شاہ کمبل پوش رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب ربانی کو ایک جھلک دکھائی, سب چھوڑ کر ان کے پیچھے روانہ, اور اس کے بعد 12 سال کشمیر کی پہاڑیوں میں ان کی زیر نگرانی چلہ کشی فرمائی, اور اس دوران کمبل کا لباس استعمال کیا, ریاضت اور مجاہدہ کیا, تب جا کے یہ مقام ملا کہ آج قطب ربانی کے مقام پر فائز. پیر مدد کرتا ہے, کرتا ہے یا نہیں, سب کا یقین نہیں ہے شاید.
अच्छा सबका यकीन है।
हम क्यों बैत करते हैं, वजह क्या है? देखो हर इदारे का एक कानून है, एक जाब्ता है, एक तरीका है। आप स्कूल में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी मदरसे में, दारुल उलूम में चले जाएं, कहीं भी आप जाएं, सबसे पहली चीज क्या है? दाखला। दाखला है ना, एक फॉर्म दिया जाता है, नाम लिख दिया, आपने फीस दे दी, दाखला हो। सबसे पहली चीज इल्मे दीन हासिल करना है या दुनियावी इल्म हासिल करना है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, सबसे पहली चीज क्या है? दाखला। इसी तरह खानकाह में भी आने के लिए एक दाखला, यहां का भी एक निजाम है और यहां का दाखला क्या है? बैत। जब आपने किसी के हाथ पर बैत कर ली, आपका दाखला हो गया, दाखला हो गया। लेकिन फर्क क्या है? स्कूल में अगर कोई बच्चा दाखिल हो, प्रिंसिपल को नहीं पता कि कौन दाखिल हुआ, ठीक है ना? कॉलेज में हो, नहीं पता कौन दाखिल हुआ। यूनिवर्सिटी में हो, चांसलर, वाइस चांसलर, उसको क्या पता, हजारों हैं। जैसे बड़ा इदारा उतनी तादाद ज्यादा। लेकिन इस रूहानी निजाम जो खानकाही निजाम है, इसका तरीका यह है, दुनियावी किसी इदारे में आप दाखला लें, उसके सरबराह को पता नहीं है कौन दाखिल हुआ, कितने बच्चे दाखिल हुए। लेकिन खानकाही निजाम यह है कि जब आपने किसी के हाथ पर बैत की, आपके शेख से लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम तक सब जानते हैं कि हमारे सिलसिले में दाखिल हो चुका, सबकी निगाहें करम हो गई और शजरा उठाकर जिसका नाम पढ़ो उसकी रूहानियत मुतवज्जे हो जाएगी, उसकी रूहानियत मुतवज्जे हो जाएगी। हर जगह का एक कोर्स है ना, अब दाखला होता ना, उसके बाद सिलेबस मिल गया, आप ये किताबें ले लें, ये कॉपियां हैं, ये किताबें हैं, ले लें। आपने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल किया, सिलेबस मिल गया, आपने कोर्स ले लिया, फला दुकान से ले लें, फला बाजार से ले, है ना हर एक का कोर्स। खानकाह का कोर्स क्या है? यहां क्या पढ़ाया जाता? यहां कोई सिलेबस आपको दिया गया, कोई कोर्स दिया गया, किताबें लिख दी गई कि ये किताबें पढ़ाई जाएंगी, पहले साल में ये, तो दूसरे साल में ये, तीसरे साल में ये, नहीं। और वहां पर इम्तिहान का भी वक्त है, शिशमा इम्तिहान है, सालाना इम्तिहान है, कहीं सेमिस्टर सिस्टम है, मुख्तलिफ है ना। और इम्तिहान बता दिया गया 6 महीने के बाद इम्तिहान होगा, एनुअल है, सालाना इम्तिहान होगा। खानकाह में इम्तिहान का कोई वक्त नहीं, किसी वक्त भी इम्तिहान लिया जा सकता है, किसी वक्त भी इम्तिहान लिया जा सकता है, किसी लम्हे भी इम्तिहान लिया जा सकता है। कभी आगे बिठाकर इम्तिहान लिया जाएगा, कभी पीछे बिठाकर लिया जाएगा। यह मत समझना आज हम पीछे बैठे, आज तो बुलाए नहीं, आज तो बुलाए इनको, तो आगे बुला लिया, हमें नहीं बुलाए। पीछे बिठाकर भी इम्तिहान है, आगे बुलाकर भी इम्तिहान, हर वक्त इम्तिहान है। और जाहिरी इदारे में जब तुम सबक याद कर लो, तुम्हारी छुट्टी छुट्टी हो जाती है ना, बच्चे सबक याद करते, सबक याद कर लो छुट्टी। लेकिन मकतबे इश्क का अंदाज ही निराला देखा, उसे छुट्टी ना मिली जिसे सबक याद हुआ, उसे छुट्टी ना मिली जिसे सबक याद हुआ। यहां का निजाम ही अलग है, खानकाही निजाम को समझो और ये समझो कि यहां का सिलेबस क्या है, यहां का यूनिफॉर्म क्या है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, शरीयत पर अमल करना, यही यहां का यूनिफॉर्म। हजरत कुतुब रब्बानी सैयद ताहिर अशरफ शफी अल-जिलानी नव्वर अल्लाह मरकदहू ने इस तरह अपने मुरीदीन की तरबियत फरमाई, कदम कदम पर इम्तिहान लिया और जो उनके इम्तिहान में पूरा उतर गया, दीन और दुनिया की दौलत से मालामाल कर दी। अब देखो किस तरह मदद होती है। मेरे वालिद गिरामी अशरफुल मशाइख हजरत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल-जिलानी नव्वर अल्लाह मरकदहू फरमाते हैं, पहले हज में तशरीफ ले गए, हरम शरीफ में बैठे हैं और 2-3 ताजिर हजरात भी आपके साथ बैठे, उन लोगों ने ये कहा कि ऐसा करो, जानमाज, खजूरें, आबे जमजम, तस्बियां, टोपियां, जितनी भी चीजें लेनी है हम सब आपस में हिसाब कर लें कि कितनी लेनी और इकट्ठी ले लो ताकि कम पैसे लगे। ज्यादा तादाद में आप लेंगे, थोक के हिसाब से लेंगे तो कम होगा ना। ताजिर तो हर जगह तिजारत ही करता, कराची के ताजिर थे वो वहां भी तिजारत ही कर रहे थे, एक साथ ले लें और उसके बाद आपस में तकसीम कर लें। अब देखो पीर की मदद किस तरह होती। हजरत अशरफुल मशाइख सैयद अहमद अशरफ जिलानी नब्बर अल्लाह मरकदो फरमाते हैं कि मेरा पहला हज था जब वो लोग आपस में गुफ्तगू करने लगे कि इस तरह हम सब मिलकर ले लें, तो मुझे ख्याल आया कि मेरा भी पहला हज है, मुरीदीन है, मुतकदीन है, सबको देना है, तो मैं भी इनको बता दूं कि मेरे लिए भी खजूरें खरीद लें, टोपियां वगैरह ले लें, एक साथ ले लेंगे, कम पैसे होंगे, उसके बाद हम ले लेंगे। फरमाते सिर्फ इतना मुझे ख्याल आना था कि मैंने देखा कि हजरत कुतुब रब्बानी सैयद ताहिर अशरफ जिलानी नबर अल्लाह मुकद्दहु सामने से आ रहे, नीला तहबंद चिकन का कुर्ता, सफेद टोपी और उसी शान से चलते हुए सामने से आ रहे। फरमाते जब मैंने उनको आते हुए देखा तो मेरे जहन में बिल्कुल ये ख्याल नहीं आया कि इनका विसाल हो चुका, आते हुए मैं देख रहा और आकर मेरे करीब बैठे और जो उनके जिस्म मुबारक से खुशबू आती थी वो भी मैंने महसूस की और मेरे करीब बैठकर उन्होंने फरमाया तुम क्या इनकी बातों पर ध्यान दे रहे हो, ये राह सुरूप की मंजिल है, खबरदार यहां पर कोई दुनियावी ख्याल नहीं आना चाहिए, जो तुम्हें बताया गया है वो पढ़ो, राह सलूक की मंजिल है, सोच समझ कर कदम रखो, कोई दुनियावी ख्याल ना आए। फरमाते ये कहा और उसके बाद उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बाबू सलाम से बाहर चले। जब वो चले गए तो तब मुझे ख्याल आया कि इनका तो इंतकाल हो चुका, ये तो रूहानी तौर पर आए हैं, देखो रूहानी मदद। फरमाते फिर उन लोगों ने मुझसे पूछा हजरत आपको भी कुछ चाहिए, खजूरें, टोपियां, तस्बियां आपको भी चाहिए? मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हज के बाद देखूंगा, हज कर लें उसके बाद देखेंगे, आप लोगों को लेना है तो आप ले लीजिए। 125,000 मरतबा इस्तगफार हरम शरीफ में बैठकर मुकम्मल की। उसके बाद हज का जमाना आया, हज हुआ, हज से फारिग होकर मदीने तैयबा हाजिरी हुई, रियाजुल जन्ना में बैठकर 125,000 मरतबा दुरूद शरीफ मुकम्मल की। और जब दुरूद शरीफ मुकम्मल हुआ फरमाते मैंने फिर देखा कि हजरत सामने से तशरीफ ला गए, हजरत कुतुब रब्बानी सैयद ताहिर अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह। अब जब मैंने आते हुए देखा तो मैं फिर डर गया कि फिर मुझसे कोई गलती हो गई, कि मक्के में हरम शरीफ में आप तशरीफ लाए थे, एक गलती हुई कि ख्याल आ गया था, आपने तंबीह फरमा दी, यहां भी कोई गलती हो गई, हजरत फिर तशरीफ लाए हैं। फरमाते आए मेरे पास बैठे, मेरी कमर पर हाथ रखा और फरमाया मैं अभी बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ रहा हूं और ये खुशखबरी लेकर आया हूं कि तुम्हारा हज कबूल हो गया। तुम्हारा हज कबूल हो गया, जो कुछ दुरूद तुमने पढ़ा, इस्तगफार पढ़ी, सब सरकार ने कबूल फरमाया। तो पीर ऐसे मौके पर निगरानी करता है, रहनुमाई करता है, न सिर्फ ये कि जिंदगी में विसाल के बाद भी रूहानी तौर पर आए और आकर रहनुमाई की, राह सलूक में मदद की और अपने फर्जंद को अशरफुल मशाइख बना दिया। लेकिन इसमें मुरीद को भी चाहिए कि ताल्लुक रखे, यह भी जरूरी है। कहते नहीं हमें पीर चाहिए निजामुद्दीन औलिया जैसा, हमें निजामुद्दीन औलिया जैसा पीर चाहिए। हमने कहा ठीक है फिर अमीर खुसरो जैसे मुरीद बन जाओ, मिल जाएगा निजामुद्दीन औलिया जैसा पीर। यहां तो ये कि आज इधर कल उधर, जिसको पानी पे चलता हुआ देखा तो पीछे चल पड़े, हवा पे उड़ता हुआ देखा तो चल पड़े, किसी शब्देबाज को देखा तो चल पड़े। यंतरगीर मोहकमगीर, एक दर को पकड़ लो और उसी के होकर रह जाओ। हमने इसका दामन पकड़ लिया, क्या है डुबो दे क्या है तरा दे, हमने इसको पकड़ लिया, इधर उधर मत देखो। एक आदमी दरिया के किनारे बैठा चिल्ला कर रहा, एक हाथ जाहिर हुआ, आवाज आई इस हाथ को चूम ले, ये नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम का हाथ है, उसने चूमा, बोसा दिया, छोड़ दिया। फिर एक हाथ जाहिर हुआ, इसे चूम ले, ये हजरत अली का हाथ है, चूमा, छोड़ दिया। फिर आवाज आई, इसे चूम ले, ये गौसे आजम का हाथ। फिर गरीब नवाज का हाथ, सारे बुजुर्गान दीन के हाथ जाहिर हुए। आखिर में आवाज आई, इस हाथ को चूम ले, तेरे पीर का हाथ। उसने चूमा लेकिन छोड़ा नहीं, सारे हाथ छोड़ दिए, छोड़ा नहीं। किसी ने कहा, अरे तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक छोड़ दिया, तूने मौला अली का छोड़ दिया, तूने गौसे आजम, गरीब नवाज सबका हाथ छोड़ दिया, पीर का हाथ नहीं छोड़ा। कहा, इसे कैसे छोड़ू, इसी के सदके में तो ये सारे हाथ मिले, अगर इसी को छोड़ दिया तो फिर आगे क्या मिले। इसलिए अपनी अकीदत को मुस्तहकम रखो, इधर उधर मत देखो, जिसका दामन पकड़ लिया है उसके दामन को मजबूती के साथ थामे रहो, इंशाअल्लाह एक निगाह करम होगी, इस दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। हजरत कुतुब रब्बानी सैयद ताहिर अशरफ जिलानी नव्वर अल्लाह मरकदहु की तालीमात यही थी, उनका पैगाम यही था। बुजुर्गान दीन का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, अमन का पैगाम है। वो खुद शरीयत पर इस्तेकामत के साथ अमल करते रहे और मुरीदीन को भी शरीयत पर इस्तेकामत के साथ अमल की तालीम देते रहे, सारी जिंदगी इसी में गुजार दी। अल्लाह तबारक व तआला ने आज वो मकाम अता फरमाया कि आज भी नाम जिंदा है, इंशाअल्लाह ता कयामत जिंदा रहे। ये हजरत का 54वां सालाना उर्स है, 54 साल गुजर चुके हैं, आज वही रौनक। हजरत अशरफुल मशाइख फरमाते हैं कि जब हजरत कुतुब रब्बानी इस मकाम पर तशरीफ लाए और मट्टी उठाकर सूंघी और निशानदेही फरमाई कि यहां मेरा मजार बनेगा, लोगों ने कहा, हुजूर ये जंगल है, यहां कौन आएगा, यहां पर तो दिन में कोई नहीं आता, तो रात में कौन आएगा। आपने फरमाया, यहां मस्जिद होगी, मदरसा होगा, खानकाह होगी, लोग फैज हासिल करेंगे। हजरत कुतुब रब्बानी ने फरमाया, मेरे इस जमीन में आने की देर है, मैं इस जमीन में आऊंगा, ये जंगल मंगल बन जाए, यहां पर रहमतों की बरसात होगी, यहां लोग इबादत करेंगे, यहां से फैज जारी होगा। मेरे वालिद गिरामी फरमाते हैं कि आज जब मैं दरगाह की इस रौनक को देखता हूं, हजरत कुतुब रब्बानी के अल्फाज मेरे कानों में गूंजते हैं, जब मैं इस जमीन में आ जाऊंगा ये जंगल मंगल हो जाए। पहले दिन में कोई नहीं आता था, अब सारी रात लोग बैठे रहते। ये एक अल्लाह के वली की शान है, इसलिए कि जिसके अंदर रूहानियत है उसकी शान ये होती है कि अगर रूहानियत वाला जमीन पर हो तो उसके गिर्द मेला है, और जमीन में चला जाए तो मजार के गिर्द मेला। रूहानियत वाला जहां भी बैठ जाए उसमें कशिश है, रूहानियत खुद बखुद खींच लेती, उसको कोई बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, उसको कोई इश्तिहार देने की जरूरत नहीं, आओ हमसे फैज हासिल कर लो। जंगल में बैठ जाए वहीं मखलूक खुदा खींच कर पहुंच जाते। तो आज के इस उर्स का पैगाम यही है कि हम और आप शरीयत पर इस्तेकामत के साथ अमल करें, इन बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन के दामन को मजबूती के साथ थामे रहे। हजरत कुतुब रब्बानी ने अपनी पूरी जिंदगी इसी चीज की तरवीज और इशात में गुजारी, हजारों को सही मानों में मुसलमान बना दिया और हजारों ने आपके दस्ते मुबारक पर बैत की और उसके बाद सिलसिला अशरफिया में दाखिल हुए और आपकी निगाह करम से सच्चे और पक्के मोमिन सुन्नी मुसलमान बन गए। आपको खराज तहसीन पेश करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि हम उनकी तालीमात पर अमल करें, उनके इरशादात पर अमल करें, जिस मिशन को वो लेकर चलते रहे हम भी उस मिशन को लेकर चलें और इस यकीन के साथ चलें कि वो अपनी रूहानियत और नूरानियत से हमें देख रहे। हम में, हमारी निगाह में ये तासीर नहीं कि हम उनको देखें, लेकिन हजरत कुतुब रब्बानी और हजरत अशरफुल मशाइख अपनी निगाह विलायत से इस पूरे मजमे को देख रहे हैं और इंशाअल्लाह जो भी यहां पर आया है खाली नहीं जाएगा, झोलियां भर कर लेकर जाए। जितने उलमाए किराम यहां पर तशरीफ लाए और तशरीफ लाकर यहां से वापस भी चले गए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो यहां पर मौजूद हैं, अपने कीमती वक्त निकालकर यहां तशरीफ लाए। आप तमाम हजरात, हकीकत हाल यही है कि जिस जिसको उन्होंने बुलाया वो आ गया और जिसको नहीं बुलाया वो नहीं आया। जब आप आ गए हैं तो आप समझ लें कि आप एक बुजुर्ग के बुलावे पर आए, और जब कोई बुलाता है तो खाली नहीं लौटाता, झोलियां भर कर भेज देता। आप सब कुछ नसीब हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए, इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए, इनके मिशन को जिंदा रखने की तौफीक अता फरमाए, इनकी मोहब्बत में जिंदा रहें और इनकी मोहब्बत में मौत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।